सुते पदनख विभायस्य सुफलम् जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः स्मरामि प्रातस्तम् भुवन महनीयम् नवनवम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जय मुदीरये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण
मांडोक्य उपनिषद के हृदय में अब प्रवेश करना है। ये सातवां मंत्र जो है यही उसका हृदय है। आत्मा का साक्षात्कार अथवा ब्रह्म ज्ञान यदि करना हो तो इस सातवें मंत्र का अच्छी प्रकार से भाष्य और जिस किसी का प्रवचन आप पढ़ते हो मतलब गुरुमुख से उसको श्रवण कर लीजिए और फिर विचार कीजिए तो निश्चय ही आपको रोशनी प्राप्त होगी। प्रारंभ किया था कि ओम पर ब्रह्म का नाम है तो ओम तो हुआ नाम और ब्रह्म हुआ नामी। तो पहले ये भावना कराई कि सब ओम है और दूसरे मंत्र में कह दिया कि सब ब्रह्म है अर्थात नाम और नामी एक ही है। अब इस पर विचार कीजिए कि सब कहते हैं कि सब ब्रह्म है ऐसा कौन सा संप्रदाय है भारत का चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो निराकारवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो द्वैतवादी कोई भी हो सभी कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है सब परमात्मा और अद्वैत वेदांत भी कहता है कि सब ब्रह्म है तो दोनों में एक ही बात है क्या बोले आप भी आपका भी तो यही निष्कर्ष है कि सब ब्रह्म है ब्रह्म ही वेदम सर्वम हम भी यही कहते हैं कि सब ब्रह्म है तो भाई महाराष्ट्र कहते हैं कि सब धान 27 पसेरी नहीं होते हैं हर एक दर्शन का एक विशेष प्रक्रिया भी होती है और विशेष प्राप्तव्य भी होता है अब जो अद्वैत वेदांतियों को छोड़ करके जो लोग कहते हैं सब ब्रह्म है, लेकिन अभी तो हमको ब्रह्म का दर्शन करना है। जब सब ब्रह्म ही है तो इतने रूपों में दर्शन हो रहा है, अब और काहे का दर्शन करना है भाई। तो आप अपने ही वाक्य को अपने ही एक्टिविटी से जो है गलत सिद्ध कर रहे हो। सब ब्रह्म है और अभी हमें ब्रह्म का दर्शन करना है। तो वो सबको सच्चा मानते हैं, ब्रह्म से अलग सबको सच्चा मानते हैं और ब्रह्म को सबसे अलग सच्चा मानते हैं और एक सच्चे को दूसरे सच्चे के ऊपर चढ़ा करके फिर कहते हैं कि सब ब्रह्म है। रस्सी भी सच्ची है और सांप भी सच्चा है। अब रस्सी के ऊपर सांप चढ़ बैठा तो इसलिए कहो भाई, जब रस्सी से अलग सांप की उपलब्धि नहीं होती है तो यूं ही कहो ना कि रस्सी भी सांप ही है। अच्छा, इसमें रस्सी सांप वाला वो दृष्टांत नहीं देंगे। वो क्या दृष्टांत देंगे? आभूषण स्वर्ण वाला। आभूषण भी स्वर्ण है और स्वर्ण भी आभूषण में होता प्रोत है। तो भागवत जी में लिखा कि भले ही उसमें आभूषण में नाम रूप कल्पित किए गए हों, लेकिन कल्पित है इसीलिए क्या कोई आभूषण को छोड़ देता है? तो सोना समझ करके उसको ग्रहणी करता है। तो आप नाम रूप मिथ्याएं नाम रूप मिथ्याएं इसको गाते रहते हो और संसार को छोड़ देते हो ना। तो आपने तो ब्रह्म को ही छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्म भी तो सब है। ये आक्षेप है। तो कहते हैं कि भाई रज्जु सर्प का दृष्टांत भी तो लो, भ्रम के जो दृष्टांत हैं वो भी तो लो। तो सांप तीन काल में रस्सी में है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, लेकिन जिस समय सांप दिखता है उस समय रस्सी नहीं दिखती, और जिस समय प्रकाश में रस्सी दिखती है उस समय सांप नहीं दिखता, या दोनों दिखते रहते हैं, एक ही दिखता है ना। तो जिसको आप जगत बोल रहे हो वो जगत तभी तक है जब तक कि आप उसके अधिष्ठान ब्रह्म को नहीं समझते हो। ब्रह्म में तो जगत नाम की कोई चीज है थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, लेकिन इसी जगत की खोपी भरने में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसको इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो। जो चीज है ही नहीं तो उसकी उपयोगिता क्या है? नहीं बोले उपयोगी तो है, बस यही घुंडी है ना। इसी को अज्ञान बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं। जो चीज है नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसको उपयोगी मानना ये बुद्धि का दिवालियापन है। मगर सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस वस्तु को अनुपयोगी समझ करके छोड़ दे। इसलिए शास्त्र कहता है कि भाई जब तक ये हिम्मत ना आवे तब तक पकड़े रहो और ये भावना करो कि ये परमात्मा ही है। तो इस बात को समझना चाहिए कि सब ब्रह्म है, इसमें सब जो है वो ऐसा ही है जैसे रस्सी में सांप है। अच्छा चलो, खैर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते, थोड़ी कल्पना। मरते हुए आदमियों को तो देखा ही है हमने, हमारे सारे बुजुर्ग लोग चले गए, क्या साथ ले गए? जिस दुनिया को आप सच्ची बता रहे हो उसमें से एक अंश भी उनके साथ गया? और हमारे साथ भी नहीं जाएगा। तो इतना सोच के ही वैराग्य तो उत्पन्न होता है ना, शास्त्र से न सही प्रैक्टिकल विजडम तो है ना। महात्मा ने किसी सेठ को ज्ञान देना था, क्या सेवा करूं महाराज? बोले ये भैया हमारे पास सुई है, इसे तुम रख लो, जब स्वर्ग में मिलेंगे तो दे देना हमको। अब वो तो भाई खाते में लग रहा था अपना, तो उसने सुई उठा के रख ली। बोले ठीक है साहब, दे देंगे। फिर उसे ख्याल आया, अरे बुला 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 महात्मा बुला। ये महाराज स्वर्ग में जाएंगे हम, ये तो आपने चलो अच्छा कह दिया, नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मगर ये सुई तो यही रह जाएगी, सुई तो हमारे साथ में जाएगी नहीं फिर। अरे तो बेवकूफ, यही तो समझाना चाहता हूं मैं। सुइयों का ढेर इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? सुई चाहिए, मांग के भी काम कर सकते हो, या एक सुई ले लो और उससे अपना काम चला लो। तो ये कहते हैं कि सोए महात्मा चतुष्पाद। अब ये ध्यान रखना है कि अधिष्ठान में, ब्रह्म में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो वैसा सत्य नहीं है जैसा ब्रह्म सत्य है, वो प्रातीतिक सत्य है, मालूम पड़ता है सत्य जैसा। तुलसीदास जी की चौपाई बहुत बढ़िया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाय। ब्रह्म में ये जड़ माया जो है वो है नहीं, लेकिन ब्रह्म इतना सच्चा है कि वो जड़ माया भी सच्ची जैसी प्रतीत होती है। सच्चाई माया की नहीं है, सच्चाई ब्रह्म की है, और सच्ची होकर के वो जीवों को बांधती है, मोह उत्पन्न करती है। अगर आप माया को झूठी समझ लें तो उससे बंधेगा नहीं कोई। बोले हम तो जो रस्सी से बांधे देते हैं कि बांध दे, देखा कौन सी रस्सी है, और उसने ऐसे ऐसे किया तो समझ रहा है कि तो वैसे ही नाटक कर रहा है ही नहीं, इसके पास रस्सी। और अगर ये भ्रम हो गया कि इसके पास रस्सी है तो हम तो बंध गए, अब जब तक वो खोलेगा नहीं तब तक खुलेंगे नहीं। जो बांध है सो छोड़ है, भगवान ने बांधा है, जब वो ही छोड़ेगा तब ही छूटेगा। अरे किसने बांधा है? भगवान को क्या पड़ी है जीव को बांधने के लिए? कोई मजा आता है? सब मैलिशियस प्लेजर लेता है। किसी ने नहीं बांधा, अविद्या ने भी नहीं बांधा, लेकिन यही तो सारा माया, इसी को कहते हैं कि जो चीज जहां जो नहीं है, जैसी नहीं है वहां वैसी प्रतीति हो जाए, और बंधन का खेल है तो बंधन मालूम पड़े, मुक्ति का खेल है तो मुक्ति मालूम पड़े। अच्छा मान लो कोई महात्मा मुक्त हो गए, तो क्या पहले बंधन में थे वो? आत्मा तो सबकी हमेशा से मुक्त ही है, सिर्फ वो समझते नहीं थे कि मैं आत्मा हूं। अब उनको ये पक्का हो गया कि मैं तो आत्मा ही हूं, इसलिए मैं नित्य मुक्त हूं। नित्य मुक्तता का अनुभव होता है, मैं पहले बंधा हुआ था अब मुक्त हो गया, ऐसा अनुभव नहीं होता। नारायण। तो स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये स्वयं माने वह ब्रह्म और आत्मा माने ये जो मैं है, ये चार पादों वाला है। तो तीन पाद तो इसके बता दिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इसमें विश्व तेजस प्राज्ञ और समष्टि में इनके इक्विवेलेंट्स विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। अच्छा अब जो हम तो समापन की ओर ही चल रहे हैं, अब तो इतने दिन में जो समझा हो, पहले बच्चे पहाड़े याद करवाते थे ना छोटी क्लास में, आजकल तो कोई पहाड़े याद ही नहीं करते हैं, सबने कैलकुलेटर हाथ में ले रखे। तो पहाड़े याद करते थे तो फिर वो टीचर जो थे वो कहते थे पटक पूछेंगे, पटक। तो क्या 56 सात 58 क्या 56। अब वो जब तक उसने ठीक तरह से याद नहीं किया हुआ है तो इधर उधर वो नहीं लगा सकता। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये विश्व और विराट इनमें आपस में क्या संबंध है? चलो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है ना तो मुझे ही बोल लेना, मन मन में उत्तर दे लेना। तो विराट का हिस्सा है क्या विश्व, या विश्व को खींच तान करके विराट कर दोगे? दृष्टिकोण है, एक शरीर में यदि आपने अपनी दृष्टि बांध ली तो आपका नाम विश्व है, और समष्टि में आप जा नहीं सकते हो, इस बुद्धि से तो जा नहीं सकते हो, लेकिन अपनी इस सीमित बुद्धि का अभिमान छोड़ सकते हो। अरे मैं तो जग रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग सो रहे हैं, समष्टि में तो यही विचार करोगे ना, तो कौन जग रहा है कौन सो रहा है? तो जो समष्टि है जागृताभिमानी वो तो नित्य जागृत है नारायण। तो इस मैं से जब हम अपना अभिमान निकाल लेते हैं तो हम अपने आप ही विराट हो जाते हैं, यही विराट का अनुभव है। और ऐसा सोचोगे कि मैं विराट शरीर से बाहर, तो ये भाव तो है नारायण, लेकिन भाव ही भाव है, इसका परिणाम मालूम है क्या होगा? बस इसका परिणाम ये होगा कि सबकी सेवा कर, सेवा के लिए आप ऐसा मान लो तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो फैलाने से काम नहीं चलेगा, सिकोड़ने से काम चलेगा। विराट, विराट को सिकोड़ो तो विश्व, और विश्व को भी सिकोड़ो भीतर, तब आत्मा पर पहुंचेंगे। ये जो सिकोड़ने की प्रक्रिया है इसी को निषेध प्रक्रिया बोलते हैं। निषेध माने अस्वीकार करते जाओ, जैसे हां जी करते हैं ना तो वो तो स्वीकार की बात है, और ना जी करते जाओ ये इसी को निषेध बोलते हैं। अब बोले कोल्ड ड्रिंक लेंगे? नो प्लीज। अच्छा तो कॉफी ले लीजिए? नो प्लीज। बोले आप कुछ भी नहीं लेते हैं तो खाएंगे क्या? बोले आज हमारा उपवास है। वो चुप हो जाएगा। तो जब आप ये कह दो कि मैं तो अभोक्ता हूं, मैं तो आकर्ता हूं, तो किसी की क्या हिम्मत है कि जो आपके मुंह में जबरदस्ती रख देना है। इंद्रियों में जब हम भोगने की इच्छा भीतर होती है तभी इंद्रियां बाहर की तरफ निकलती हैं। स्वप्न में भी बाहर ही निकलती हैं लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलती। मन में बैठी हुई इंद्रियां मन के भीतर ही घूमती रहती हैं। जैसे घर में मान लो कई कमरे हों तो कमरों में घूम घूम के, पहले बचपन में तो माताएं रोटी गोल करके जो है माऊ 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 करके सारे घर में घूमते रहते थे, खाते रहते, यही स्वप्न रह रहे। और खाते खाते घर से बाहर निकल जाओ, यही जागृत है। तो इंद्रियां जब भीतर ही भीतर अपनी रहती हैं मन के भीतर ही, तब इसको स्वप्न बोलते हैं। और जब शरीर से बाहर निकलने लगती हैं तब इसको जागृत बोलते हैं। अब फिर मां कहती सो जा, सो गए। जब इंद्रियां ना बाहर निकलती हैं ना भीतर निकलती हैं, सुषुप्ति हो गई या अपने आप ही मन में आ गई है कि थक गए अब तो सो गए। तो बहिष्प्रज्ञता ये विश्व में है बाहर निकलना, अंतःप्रज्ञता ये स्वप्न में है माने तेजस में है, और घन प्रज्ञता प्रज्ञान घन ये सुषुप्ति में है। अब इसमें आत्मा क्या रहा? रस्सी में पहला सांप दिखा, डर के भागे, फिर माला दिखी, फिर पकड़ने को दौड़े, फिर भूछिद्र दिखा जमीन की दरार, तो उपेक्षा करके आगे बढ़ गए। यही तीन बातें होती हैं ना संसार, हे उपाधेय और उपेक्षणीय, सारा व्यवहार इन्हीं तीन चीजों में है। तो भाष्यकार कहते हैं कि हे उपाधेय और उपेक्षणीय, तो सुषुप्ति में यद्यपि वहां आत्मा अपेक्षाकृत शुद्ध रूप में रहता है, अपेक्षाकृत अत्यंत शुद्ध रूप में नहीं रहता, अपेक्षाकृत रहता है, लेकिन सुषुप्ति के बारे में तो कभी विचार ही नहीं करते। और स्वप्न भी यदि अनुकूल हो तो विचार करते हैं, प्रतिकूल हो तो उसका भी विचार नहीं करते। या महाराष्ट्री जब रहते थे तो एक नाई था बार्बर जो उनका बाल बनाता, तो एक दिन वो लेट आया तो महाराज जी ने पूछा भाई आज लेट कैसे हो गए? बोले क्या बताऊं, सुबह जो है नींद लग गई सपना देखने। क्या सपना देखने लगा? बोले महाराज जी इतना डर लगा, एक सांप काला जो है वो काटने के लिए दौड़ा, मैं भाग रहा हूं। महाराज जी बोले कि ये बता काटा कि नहीं? कि नहीं काटा तो नहीं, अरे काट लेता तो अच्छा रहता। बोले क्यों? कि सपने में यदि सांप काट ले तो जागृत अवस्था में उसे धन का आगम होता है। अब पहले दिन तो वो सपने में जो है उस सांप से डर रहा था, जब महाराज जी ने ये सुना दी बात तो अगले दिन से वो जानबूझ कर सपने में सांप दिखे और वो काट ले। क्या सपने? वही सपना याद रखते हैं, वही सपने के बारे में सोचते हैं जो हमारे अनुकूल हो। विचार में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखी जाती, विचार में तो उसकी सत्यता असत्यता देखी जाती। तो और जागृत जागृत में दिमाग को फुर्सत ही नहीं है। यद्यपि आत्मा विश्व विराट के रूप से जागृत में मौजूद है, तेजस हिरण्य गर्भ के रूप से स्वप्न में मौजूद है और प्राज्ञ ईश्वर के रूप से सुषुप्ति में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते। सांप दिखता है तब भी रस्सी दिखती है, माला दिखती है तब भी रस्सी दिखती है, भूछिद्र दिखता है तब भी रस्सी दिखती है। अब किसी ने कहा भैया ये सब कुछ नहीं है, ये रस्सी है, कि मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, अब वो टॉर्च निकालता है या भगवान की कृपा से बिजली चमकती है, तो जैसे ही रोशनी हुई उसने तो कह दिया कि ये सांप भी नहीं है, माला भी नहीं है, भूछिद्र भी नहीं है, रस्सी है, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। अब बिजली चमकने की जरूरत थी, तो बिजली चमकी तो रस्सी ही दिखी, बाकी चीजें तो दिखी ही नहीं। बोले हां तुम ठीक कहते हो। इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं ना। आत्मा कहीं से चौथी कोई चीज नहीं आएगी। इन्हीं तीन रूपों में जो ये आत्मा मिला हुआ है, यदि हम इनके उपलब्ध स्वरूप के प्रति नकार दें, निषेध कर दें कि ये वो आत्मा नहीं है जिसको शास्त्र आत्मा कहता है, यही नकारना है। गुरुजी ने तो कहा था कि आत्मा तो सबका अपना है, उससे तो भय नहीं लगना चाहिए, लेकिन जागृत में तो जितने विश्व हैं किसी से भय लगता है, किसी से प्रेम होता है। तो जैसे सांप से भय लगता है, माला से प्रेम होता है, ऐसे ही तो है और क्या है। तो अगर विश्व में आत्मा का दर्शन करना है तो ये राग और द्वेष, इनसे तो छुटकारा चाहिए ना। तो इसको बोलते हैं निषेध। तो अब ये सातवें मंत्र में ये बात बता रहे हैं कि आओ हम आपको चौथे पाद की बात अब बताते हैं, जो आत्मा का स्वरूप है, स्वयं आत्मा चतुष्पाद। तो तीन पादों का निषेध करके जो बच रहता है वही चौथा पाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तुरीय जो है वो एक अवस्था है। यहां भी एक दिन सज्जन कह रहे थे कि योग वशिष्ठ में जिसको तुरीयगा कहा है वही है ना ये तुरीय। अरे वो तुरीयगा जो सात भूमिकाएं हैं वो तो बुद्धि की अवस्थाएं हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं, और ये तुरीय जो है, तुरीय माने चतुरीय, इसमें चकार का लोप हो गया है, चौथा। तो एक दो तीन, तीन के बाद गिनती आती है चार, तो बोले ऐसा चार नहीं है। जो एक में भी रहे, दो में भी रहे, तीन में भी रहे, तीनों के बिना भी रहे, वो चौथा है, तीन से विलक्षण। उसका लक्षण ऐसा है जो तीनों में भी घटित हो जाता है और इन तीनों से परे भी रहता है। जैसे अब देखो नाम ही ले देते हैं, कोई बात नहीं है, ब्रह्मा कुमारी हैं, और जैनिज्म में वो कहते हैं ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? कि संसार में दुख है। अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाई होती तो ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, सृष्टि में दुख कहां से आता? ये उनका तर्क है। तो ईश्वर को नकार दिया नारायण। तो बात इसमें समझने की है कि जैसी चीजें उपलब्ध हो रही हैं उनके उपलब्ध स्वरूप को नकारो। और जो शास्त्र जैसा बताता है ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप वैसा स्वीकारो। नकारने का मतलब यह नहीं है कि हम इसको बोले मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है तो निकाल के फेंक दो शरीर। कोई फेंक सकता है क्या? तो ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, इसका नकारने का क्या मतलब हुआ? कि ये आत्मा नहीं है। उपलब्ध तो हो रहा है आत्मा ही इस समय, शरीर के रूप में भी आत्मा ही उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ये वो आत्मा नहीं है जिस आत्मा का ज्ञान हमारा शास्त्र कराना चाहता है। ये तो पैदा हुआ है, घटता बढ़ता है, मरेगा। और आत्मा का लक्षण तो ये है कि न जायते म्रियते, उसमें तो ये षड भाव विकार है नहीं, तो इसलिए ये तो आत्मा नहीं हो सकता। बस इतना ही है, ये आत्मा नहीं हो सकता, यही नकारना है। जो समाधि वाले लोग हैं वो कहते हैं जब तक दिखता रहेगा तब तक तो हम इसको मैं ही मानेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसका भान ही खत्म कर दो तब आत्मा मानेंगे इसको। तो सारी जिंदगी वो समाधि लगाने में ही लगे रहते हैं। लगती हो तो भगवान कृपा करें उनके ऊपर। ज्यादातर तो कहते ही कहते हैं लोग, ये योग दर्शन का सूत्र है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो हमारा ध्यान भी कभी नहीं गया था, महाराज जी ने ध्यान आकर्षित किया कि ये बताओ योगश्चित्त वृत्ति निरोध है कि योगश्चित्त निरोध है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध है ना, माने लहरों को रोक दो। चित्त की वृत्ति माने यह हुआ चित्त तो समुद्र के समान है और वृत्ति उसकी जो है लहरों के समान है, तो बोले लहर ना उठने पा रहा। तो वृत्ति का निरोध करने से क्या चित्त का निरोध हो जाएगा? इसीलिए जैसे ही समाधि टूटती है तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अगला सूत्र कहता है कि इस समाधि में जाने से पहले जो दृष्टा दृश्य का मेल हो जाता था वही फिर होने लगता, वृत्ति सारूप्य हो जाता नारायण। तो ये मैं नहीं कहता कि समाधि नहीं लगानी चाहिए, मगर अल्टीमेट समाधि से ही ज्ञान होता है या परमात्मा की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं है। समाधि लगानी चाहिए एकाग्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, विक्षेप की शांति के लिए। तो ये जो विश्व तेजस प्राज्ञ है ये आत्मा के रूप होते हुए भी ये वो आत्मा नहीं है जिस आत्मा के बारे में शास्त्र बताना चाहता है, स्वयं आत्मा चतुष्पाद। अब कहते हैं कि जब आपने तीन का वर्णन कर दिया तो चौथा तो अपने आप ही सिद्ध हो गया। वो चौथे का मतलब एक दो तीन चार, चार वाला चार बता रहे हैं। बोले तीन का वर्णन कर दिया तो चौथा तो अलग अपने आप हो गया। तो बोले नहीं होगा, क्योंकि वो इन तीन में भी तो शामिल है। तो वही गलती फिर करेंगे। पहली गलती क्या हो रही थी कि दृष्टा और दृश्य इनको मिलाते थे हम। अब तुम कह रहे हो कि बस यही जो दृष्टा है जागृत का यही आत्मा है, तो ये आत्मा तो स्वप्न में बदल गया, सुषुप्ति में बदल गया। और शास्त्र कहता है कि जो बदलने वाली चीज है वो आत्मा नहीं है, वो भी दृश्य ही है। इसलिए क्या बोलते हैं कि दृश्य और एक देशी दृष्टा इन दोनों का जो साक्षी है वो वो आत्मा है, ये ख्याल रखना। तो निषेध आपको दृश्य का भी करना पड़ेगा और निषेध आपको दृष्टा का भी करना पड़ेगा। तो ये जो सातवां मंत्र है इसमें दोनों का निषेध बताया है। अच्छा, फिर कहते हैं कि चलो ऐसे ही सही, चौथा मानने में आपको आपत्ति क्या है, एक दो तीन के बाद चार मानने में आपत्ति क्या है। बोले हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम हमको पकड़ोगे कि चार पे ही क्यों रुक गए, फिर पांचवा भी मानो। इसीलिए जो कहते हैं ना तुरीय एक चौथी अवस्था है, फिर वो आत्मा के लिए क्या बोलते हैं, तुरीयातीत। आत्मा तो तुरीयातीत है, ये कबीरपंथी जो है ये तुरीयातीत बोलते हैं, समाधि को वो तुरीय बोलते हैं। अरविंद घोष ने भी, वो तो है ही कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस और फिर सुपर कॉन्शियसनेस और फिर ओवर कॉन्शियसनेस, मेरे सारे भेद उसके कॉन्शियसनेस के कर दिए ना, माइंड, ओवर माइंड, सुपर माइंड। तो भेद तो चाहे जितने बनाते चले जाओ, भेद का मतलब तो सिर्फ समझने की में सुविधा करना है, और दर्शन अनुभूति जो होती है वो भेद को कम करने से होती है। तो तीन भेद बन गए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और इनके अभिमानियों का, अब और भेद मत बनाओ, नहीं तो फिर पांचवा मानना पड़ेगा, फिर छठा मानना पड़ेगा, फिर अनवस्था प्राप्त होगी। इसको दोष मानते हैं विचार। अच्छा, तो बोले ऐसे कह दो ना कि आत्मा है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा है कैसा है। बोले काला है, गोरा है, सत है, चित है, आनंद है। आजकल तो यही वेदांत चल रहा है ना, सच्चिदानंद भगवान की जय नारायण, लो हो गया वेदांत। तो सच्चित आनंद बोल दिए तो क्या आत्मा का दर्शन हो गया, मैं सच्चित आनंद हूं, नहीं होगा, क्योंकि वो शब्द का विषय नहीं है। शब्द से जो चीज जानी जाती है वो सिर्फ पांच तरीके से ही जानी जा सकती है, जाति, गुण, क्रिया, संबंध और रूढ़ी, ये पांच। जैसे किसी का परिचय कराना हो तो बोले कि ये सब ब्राह्मण है, एक परिचय तो हो गया ना, माने क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, सबसे अलग करके उसको बता दिया ब्राह्मण, ये सब सन्यासी हैं, ये भी एक जाति हो गई है। वैसे जाति नहीं है, क्योंकि ज माने तो जन्म होता है, जन्म से जो अनेकों में एक होकर के रहे उसको जाति बोलते हैं। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, तो वो जाति है। महाराज श्री कहते थे कि एक जाति होती है और एक वर्ण होता है। जाति तो बाप की जो जाति है वही बेटे की जाति होगी, क्योंकि जन्म से उसका संबंध है। लेकिन वर्ण जो है वो वर्णनात् वर्ण, ये माथे पर किसी के नहीं लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय, उसके कर्म बता देंगे कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि क्या है। भले ही वो अपने को जो है डिंग मारता रहे कि मैं अमुक वर्ण का हूं, लेकिन उसके कर्म बता देंगे। इसीलिए गीता में आप देखो, शमो दमस्तप शौचम है, क्षांतिराड जाओ मे वच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो उससे किसी का स्वभाव ब्राह्मण का है कि नहीं, ये उसके कर्मों से पता चल जाता है। क्षात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम, वहां सब स्वभाव का ही वर्णन है, कहीं जाति को लेकर के वर्णन नहीं है। चौथे अध्याय में एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो वहां कर्म से वो जाति मान लेते हैं तो वो अलग प्रसंग है। और इसमें ज्यादा चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। आत्मज्ञान में उपयोगी महर्षि के शब्द हैं ये। वो कहते हैं कि यदि कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसमें ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए और थोड़ा क्षात्र स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण का स्वभाव तो अभी बताया ही है, श्लोक बोला सम धम इत्यादि जो है। और क्षात्र स्वभाव क्या है कि दुश्मन को अपने सामने ठहरने न दें। तो ये जो विकार है, ये जो इम्पेडिमेंट्स साधन की रुकावटें हैं, इनको जो प्रारब्ध है भगवान की इच्छा है ऐसा कहकर स्वीकार करता चलता है तो वो क्षात्र धर्म नहीं है, वो तो बनिया है। एक ठाकुर साहब थे, एक बनिया था, तो मूंछों की लड़ाई हो गई। बनिए ने मूछ ऊपर कर रखी थी, ठाकुर साहब ने कहा हे राव ये तुम ऊपर नहीं कर सकते हो, ये तो हमको ही अधिकार। बोले तुम्हें कैसे अधिकार है, अब आपस में लड़ बैठे। तो दोनों ने तलवारें निकाल ली। अब बनिए ने चाल चली, उसने कहा मैं तो हार जाऊंगा इसके सामने। तो उसने कहा ऐसा है, पहले अपने घर वालों को खत्म करो, क्योंकि पीछे रोने वाला कोई बचना नहीं चाहिए। हम दोनों लड़ेंगे तो एक तो मरेगा, तो पहले अपने घर वालों को खत्म करो, उसके बाद हम लड़ेंगे, फिर देखेंगे किसकी ऊंचे ऊंची नीची होती हैं। अब वो क्षत्रिय तो जोश में था तो तलवार लेकर गया, घर वालों को खत्म कर दिया। बनिए ने उपक्रम तो किया उठने का, लेकिन उठाने के बाद जब वो लौट के आया क्षत्रिय, तो बोले कि तू गया नहीं। बोले भैया मैंने तो अपनी मूंछ नीचे कर ली, तू जीता मैं आ रहा, कि अब मैं जीतने से क्या है, मैं तो अपने परिवार को खत्म कर आया, असलियत में तो तू जीत गया ला रहे। तो ये बढ़िया स्वभाव जो होता है वो बोल के अपने को तो पत्थर के नीचे से हाथ निकालना है, कैसे भी निकाल लो, लड़ाई लड़ने से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर ये क्षत्रिय का स्वभाव बता, ईश्वर भावस्व दानम, ईश्वर भावस्व। ईश्वर ये एडमिनिस्ट्रेटर में यदि ईश्वर भाव नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। बोले भाई साहब जरा इस काम को कर दीजिए, कर देंगे साहब, मैंने थोड़ी कर रहे हैं। और उसने कहा ये काम करना, और डर के मारे चला गया ना, कुछ कहा नहीं। तो रॉब जिसको बोलते हैं, रॉन्ग, ये होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, भय बिन होए के प्रीत। तो छात्र धर्म में है ये ईश्वर भाव अवश्य। नारायण, तो कुछ ब्राह्मण स्वभाव होना चाहिए और कुछ क्षत्रिय स्वभाव होना चाहिए, तब इस परमार्थ में मनुष्य सफल होता है। और हर जगह कॉम्प्रोमाइज करता चला जाएगा तो दुनिया के मतलब के तो रहोगे, परमार्थ मिलना मुश्किल है। तो भाई जाति से ब्रह्म का निरूपण कर दो, शब्द से कह दो कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म ऐसा होता है। बोले उसकी तो कोई जाति नहीं है, वो अजन्मा है। जो जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी क्या जाति है, तो शब्द तो उसमें काम करेगा नहीं। बोले अच्छा तो बता दो कि ब्रह्म में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। देखो अद्वैत वेदांत को छोड़ करके सबने ब्रह्म का जन्म मान लिया, ये अवतारवाद जो है ना ये और क्या है, ब्रह्म का जन्म ही तो मानते हैं। लेकिन वो ब्रह्म अद्वैत वाला ब्रह्म नहीं मानते हैं, इस बात को ख्याल में रखना। अद्वैत का जो ब्रह्म है वो निर्विशेष ब्रह्म है, वो जन्म ले ही नहीं सकता। और जो दूसरे संप्रदाय दर्शन है उनमें ब्रह्म शब्द तो है, लेकिन वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है सविशेष, सगुण, साकार की योग्यता वाला, इसलिए वहां जन्म स्वीकार कर लेते हैं, अवतार सिद्ध हो जाता है। और अद्वैत में यदि हम अवतार स्वीकार करते हैं तो अध्यारोप के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, इसीलिए सब शिष्य अपने गुरु को अवतार मानने लगते हैं, क्योंकि मानना तो कुछ ना कुछ पड़ता है श्रेष्ठता। हमारे गुरु जी तो भगवान के अवतार। तो जाति नहीं होने से शब्द से उसका निर्वचन नहीं हो सकता, निर्गुण निराकार होने से उसका शब्द से निर्वचन नहीं हो सकता, और निष्क्रिय तत्व होने से वो क्रिया से भी नहीं। बोले ये कौन साहब है कि ये आप जानते नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अच्छा तो ये एक मतलब क्रिया से कर्म से उनका परिचय हो गया। तो ब्रह्म का क्या परिचय है, उसकी क्या क्रिया है? तो और दर्शनों में तो कहेंगे कि वो जगत का कारण है, और अपने यहां क्या बोलेंगे कि जगत का कारण है ये अध्यारोप है। जैसे कहें कि ये सांप जो दिख रहा है इसका कारण रस्सी है, लेकिन जब रस्सी का बोध कराएंगे तब फिर सांप की चर्चा नहीं करेंगे, उसको अपवाद बोलेंगे। जाति गुण क्रिया अच्छा संबंध से करा दो, तुम्हारा श्री ऐसे बोलते आसाने के लिए बोलते होंगे। बोले आप इनको नहीं जानते क्या साहब? मत नहीं जानता कि वो अमुक मैम साहब जो आती हैं ना उनको तो जानते हैं। हाँ उनको तो जानो, ये उनके हस्बैंड है। तो ज्ञात से मैम साहब तो ज्ञात हैं, तो ज्ञात से अज्ञात का परिचय हो जाता है ये संबंध से। तो ब्रह्म तो नारायण अद्वितीय है, अब उसका किसके साथ संबंध जोड़ के बताओगे? अच्छा बोले रूढ़ी से ही करा दो। रूढ़ी माने अब किसी का नाम मान लो करोड़ीमल है, तो करोड़ीमल का मतलब करोड़ रुपया होता होगा उसके पास। तो बोले नाम है करोड़ीमल, बाप ने रख दिया तो करोड़ीमल हो गए ना। वो था ना काका हाथ रसी, तो उसकी कविता है नाम बड़े दर्शन थोड़े। सेठ सेठ छदम्मी लाल के चल रहे बारह मील। नाम तो है छदम्मी लाल, और उनके प्रॉपर्टी क्या है कि बारह मिल जो है उनके बारह मिलों के मालिक है, और करोड़ी मल के फाका हो रहे हैं ना। नाम तो है शांति, लेकिन नल पानी के ऊपर जो है वो दंगा कर रही है वहां पर। कौन कर रही है कि शांति देवी कर रही है। बहुत लंबी कविता है, नाम बड़े दर्शन थोड़े। अब नाम तो कोई भी कुछ भी रख सकता है। मैं सिक्स क्लास में था उस समय, तो गीता प्रेस में लेख निकला था अहम ब्रह्मास्मि, ये गीता तत्वांक के छठे अंक में था। अब उस समय मैं समझता तो कुछ नहीं था कि अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है, लेकिन पता नहीं उसको पढ़ करके मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, और थोड़ी देर के लिए तो मैं उसमें एब्जॉर्ब सा हो गया। और उसके लेखक का नाम था विद्याभूषण योगी। तो मैंने भी एक छोटी सी डायरी बनाई और उसमें लिख दिया अपना नाम, लिख करके आगे लिख दिया योगी। और डायरी पिताजी के हाथ पड़ गई। तो बोले ये क्या लिखा है? मैंने कहा वो लेख निकला था तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोले जब तू योगी नहीं है तो योगी योगी क्यों लिखता है? तो नाम तो कोई भी लिख सकता है, अपने आगे कुछ भी लिख दो। अब आजकल जितने भी उपाधियां लिखते हैं अपने नाम के आगे, भागवत भूषण, मानस किंकर नारायण, ये सब उपाधियां कहां मिलती हैं? किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए? सब आचार्य लिख रहे हैं नारायण, है उनके पास आचार्य डिग्री, लेकिन कौन पूछता है? तो लिखने से क्या फर्क होता है? लिखने से तो कुछ बात नहीं, हम लिखते हैं हम ब्रह्मज्ञानी, तो क्या हम ब्रह्मज्ञानी हो गए? तो शब्द से, केवल शब्द से ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। तो कैसे कराया जा सकता है? कि भैया नन्ना सीखो। क्या सीखो? नन्ना नेति, निषेध करना सीखो, अस्वीकार करना सीखो। इसी में से तो वैराग्य निकलेगा और इसी में से ज्ञान निकलेगा। जब हम सामने, मान लो कोई चीज अच्छी लगती है और सामने आ जाए वो, तो दौड़कर जो है उसे पकड़ लेते हैं, और अच्छी नहीं लगती है तो हाथ से प्लेट आगे को सरका देते हैं ना। तो बोले सरकाना ही सीखो, बस नन्ना सीखो। ये आत्मा नहीं, ये जो शास्त्रीय आत्मा है वो ये आत्मा नहीं। तो ये मैंने आपको शांकर भाष्य का जो इसमें इंट्रोडक्शन है सातवें मंत्र का, इसका सार सार आपको बता दिया है। एक बात रह गई है, वो कल ही बताऊंगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः।